अब आगे से बराह रास्त जिना की बात शुरू होती है, और जिक्र किसका है? अज़ानियतु वज़ानी। फजलिदु कुल्ल वाहिदिम मिन्हुमा मियत जल्दा। जो औरत बदकार हो और जो मर्द बदकार हो, तो लगाओ हर एक को इन दोनों में से 100 100 दुर्रे। फोड़े को कहते हैं, विप को कहते हैं। और फजलिदु जीम लाम दाल, ये जो लफ्ज़ है ना, हमारा जिल्द स्किन, वही इसी से है। क्यों कोड़े को जल्दा कहा? नंबर एक, ये जिल्द पे लगता है, और हुक्म भी ये है कि कोड़ा बस इतने हाथ से मारा जाए कि उसकी चोट जिल्द तक जाए, यानी हड्डी ना टूटे या गोश्त ना फटे। और दूसरा ये है कि अमूमन ये चमड़े का ही बनता है, स्किन का ही बनता है, इसलिए इसको जिल्द कहा गया। तो हर एक को मारो इसमें से 100 कोड़े, और देखो वला ता खुसकुम बिही माँ, और ना आए तुम्हें इन दोनों पर ज़रा सा भी रहम। बिही माँ कौन है? अज़ानिया वज़ानी। राफतुन वही लफ्ज़ है जिसे अल्लाह सुबहान तआला का नाम है अर रऊफ, ता मुअन्नस की इधर, रा हमजाफा, बाप की शफकत के लिए अमूमन ये लफ्ज़ आता है, कि तुम्हें इन पर ज़रा भी रहम ना आए अल्लाह के दीन के मामले में। इन कुन्तुम तूमिनून बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, अगर तुम ईमान रखते हो अल्लाह पर और रोज़े आखरत पर। और याद रखो वल यशहद अज़ाबहुमा ताइफ़तुम मिनल मुमिनीन, और चाहिए कि मुशाहिदा करे, देखे, हाजिर हो इन दोनों की सज़ा के वक्त अहले ईमान का एक गिरोह। और फिर आगे एक और आयत जो है उसको भी साथ ही लेते हैं, ताकि इकट्ठी बात फिर आखिर में होगी। अभी तक क्या कहा? अगर जो हुक्म उतरा है उसमें पहली चीज़ क्या कह दी? कि जिना करने वाली औरत और मर्द, इनको 100 कोड़े मारो। दूसरी बात है कि इनको कोड़े लगते देखकर किसी को इन पे रहम ना आए, अगर अल्लाह पर और आखरत पर ईमान लाते हो। तीसरी बात हमें पता चली कि ये सज़ा तन्हाई में नहीं दी जाएगी, बल्कि एक मजमा आम में दी जाएगी, ताकि नसीहत हासिल करें लोग। अब चौथी बात, अज़ानी ला यनकिहु इल्ला ज़ानियतन अव मुशरिका। ज़ानी शादी नहीं करता मगर ज़ानिया के साथ या मुशरिका के साथ। अब यहाँ निकाह का लफ्ज़ मैंने जान के शादी बोला, क्योंकि इस आयत को हम दो तरह से समझेंगे, लेकिन यहाँ निकाह को लफ्ज़ निकाह ही में रखा पहले आपके लिए, कि ज़ानी नहीं निकाह करता मगर ज़ानिया के साथ या मुशरिका के साथ। वह ज़ानियतु ला यनकिहुहा इल्ला ज़ानिन अव मुशरिकुन, और जानिया नहीं निकाह करती मगर जानी के साथ या मुशरिक के साथ। वहुर्रिमा ज़ालिका अलल मोमिनीन, और हराम कर दिया गया ये निकाह मोमिनों पर, या ये लोग दूसरे मोमिनों पर हराम कर दिए गए। ये पांचवी बात है, जब इधर आएंगे तो फिर इस पे बात होगी। यहाँ से लफ्ज़ जानिया शुरू होता है। जिना किसको कहते हैं? क्योंकि लफ्ज़ जिना से ही लफ्ज़ जानिया है। और फिर यहाँ ये बात नोट कर लीजिएगा कि पहले लफ्ज़ ज़ानिया आया है फिर ज़ानी। क्यों? लेडीज़ फर्स्ट, बहुत शौक है ना औरतों को हकूक लेने का। पीछे हमने सूरत माईदा पढ़ते हुए इस आयत को हवाले में लिया था, शायद आप में से किसी को याद हो। चोरी की बात हुई तो वह सारिकु व सारिका, वहाँ मर्द का जिक्र पहले औरत का बाद में, और जिना की बात हुई तो ज़ानिया तो पहले। क्यों? कि मर्द का ज़िम्मा है कमाना, वो उसमें ख़यानत करके चोरी करा तो उसका गुनाह बढ़ गया, तो उसका नाम पहले आ गया। और औरत का फ़र्ज़ होता है अपनी इज्जत और इस्मत की हिफाजत, तो पहल औरत करती है। कोई औरत पहल ना करे तो किसी मर्द की ज़रूरत नहीं हो सकती कि वो किसी की तरफ मैली निगाह लगा कर देखे, इसलिए यहाँ अब अज़ानी का लफ्ज़ आ गया। तो ज़िना किसको कहते हैं? औरत और मर्द का बग़ैर निकाह के वो ताल्लुक़ कायम करना जो निकाह के बाद कायम होता है। सिंपल सी तारीफ़ है कि औरत और मर्द का जिस्मानी ताल्लुक़, अब इसके मुख्तलिफ़ दर्जे होंगे, इसी तरह फिर ज़िना के भी मुख्तलिफ़ दर्जे होते हैं। इल्लीगल रिलेशनशिप बिटवीन बॉय एंड गर्ल, आप इसको बॉय फ्रेंडशिप कह दें, बॉय एंड गर्ल फ्रेंडशिप कह दें, आपकी मर्ज़ी। आप इसको लिविंग टुगेदर कह दें, शौक़ से कहिए। आप इसको कुछ भी कह दें, आप इसको मॉडर्नाइजेशन कह दें, शौक़ से कहिए। आप इसको सियासी मजबूरी कहें, शौक़ से कहिए। आप अपनी जॉब को बचाने के लिए अपनी बेगम को बॉस के सामने पेश करते हैं, आप जो मर्जी कहें, लेकिन जिना आसान लफ्ज़ों में वही है कि औरत की कुबुल या दुबुर में वती करना। ये अब मुश्किल लफ्ज़ है जो मैंने बाद में बोला, जिसको भी समझ आ जाएगा। जिना की क्या हैसियत है? जिना कुफर, शिर्क और कत्ल नफ्स के बाद कबीरा गुनाहों में है। फिर इसको बहुत बड़ी बेहयाई कहा गया। सूरत बनी इसराइल आयत 32 में, ला तकरबु जिना इन नहू का नफाखिशतम वसा असबीला। यानी ये बहुत बड़ी बेहयाई है, बुरा रास्ता है। अल्लाह ताला ने कभी भी इस चीज़ की इजाज़त किसी ईमान वाले को नहीं दी। जिना से रोकने का जो हुक्म है ना, इसके अंदर आप देखें तो अल्लाह ताला ने इसको मना करके असल में नसब को महफूज किया। अब यहाँ एक थोड़ी सी आपको मुश्किल लगे या आसान, लेकिन हल्की सी बात समझनी पड़ेगी, और वो क्या है कि अल्लाह ताला ने हमें शरीयत दी है। आज इस वक्त हम असल में बुक ऑफ लॉ पढ़ रहे हैं। आप में से किसी ने लॉ पढ़ा हो, कोई वकालत पढ़ता हो, स्कूलों में कॉलेजों में पढ़ते हैं वो लोग, तो आपने देखा है कि पूरे पूरे मुल्क का कानून पढ़ते हैं ना। बहुत बोरिंग भी होता है कभी कभी। कभी आप पाकिस्तान की कोई ऐसी किताब खोल के देखें तो उसमें लफ्ज़ इतने मुश्किल होते हैं, पढ़े ही नहीं जाते। दफ़ा फलां, दफ़ाए फलां, उसके अंदर फिर बड़ी, जैसे आप कह सकते हैं ना, किताबी सी ज़ुबान होती है, और उसमें अमूमन बड़े शकील किस्म के हुक्म होते हैं। लेकिन आप अगर आज फील करें ना, सूरत मायदा के बाद आज फिर मुझे वही फीलिंग्स आ रही हैं जो वहाँ आ रही थी, कि हम इस वक्त बुक ऑफ लॉ पढ़ रहे हैं। आप कह सकते हैं कि आज मैं वकालत पढ़ के आई हूँ। हम इस वक्त शरीयत का एक बहुत बुनियादी रुकन पढ़ने वाले हैं, लेकिन थोड़ी सी फिर बात लाजमी है ताकि हम समझ सकें कि बाकी जो बातें मैं कही जाएंगी वो क्या हैं। देखिए कि अल्लाह सुबहाना ताला ने ये दुनिया बनाई, हम सब समझते हैं ना। फिर हम कुरान पाक में पढ़ते हैं, लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द। ज़मीन में भी जो कुछ है वो अल्लाह का है, और आसमान में भी जो है अल्लाह का। अब दो टर्म्स लिख लें अपने सामने, एक टर्म है ज़मीन और एक है दुनिया। अमूमन हम इसको एक ही चीज़ समझते हैं, लेकिन ये दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं। ज़मीन अल्लाह की है, लेकिन इस दुनिया में अल्लाह अपने काम इंसानों के ज़रिए करवाता है, ठीक है। अल्लाह ताला ने इंसानियत के लिए कुछ अहकामात मुरतब किए थेरी की शक्ल में, और हर दौर के नबी को इल्हामी किताब की सूरत में दे दिए, जैसे आज हमारे सामने कुरान पाक की शक्ल में। ये जो कुरान है ना, आप ये कह सकते हैं कि ये कानून की किताब है, लेकिन इस थेरी पर प्रैक्टिकल अमल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया। आप इस हैसियत को समझ लें। किसी भी मुल्क के अंदर जब कानून बनता है ना, तो कानून तो कोई भी बना लेता है, लेकिन अप्लाई कौन करता है और किस पे होता है? अवाम पे होता है ना। अल्लाह ताला ने एक नक्शा बनाया, नबी ने उसमें रंग भरे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 13 साल मक्का में रहे, कोई ऐसे इकामात नहीं थे। फिर 5 साल 6 साल मक्का से आने के बाद मदीना में हुए। मदीना एक स्टेट की सूरत बन चुकी थी, मुस्लिम स्टेट थी। आप कह सकते हैं इस दुनिया में मदीना पहली मुस्लिम रियासत थी। आप एक हाकिम की हैसियत हासिल कर चुके थे, लोगों का तस्किया हो चुका था, ट्रेनिंग हो चुकी थी, 3 पेपर तो वो फर्स्ट 100/100 नंबर से पास कर चुके थे, जिसमें तौहीद का पेपर, कोड़ों में भी उन्होंने उसको कायम रखा, पत्थरों पे लिटाए गए तो भी तौहीद का इम्तिहान दिया, और कीमत सारी चुका चुके और ला इलाहा इल्लल्लाह पर जमे रहे। दूसरा पेपर उन्होंने दिया था हिजरत के नाम पे, दिल की खुशी से उन्होंने हिजरतें की, रोते धोते नहीं की, बड़े शौक के साथ उन्होंने हिजरत की कि हमें अब अल्लाह की बात की तरफ आना है। और उसके बाद अब मदनी ज़िंदगी के 5 साल जो गुज़र चुके थे, उसमें जिहाद का पेपर भी दे चुके थे। ये 3 वो चीज़ें होती हैं जिसके बाद चौथी चीज़, जिसको इताअत कहते हैं, फरमाबरदारी, समय न व ताना, बात को सुन के इशारा समझने वाले सहाबा किराम बिल्कुल इस तरह के हो चुके थे। और अब उनको कहा जा रहा है कि सूरत अनज़लनाह व फरदनाह, और अल्लाह ताला ने शरीयत का निफास किया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए से शरीयत नाफिज हुई थी। आप ये बात कह सकते हैं कि शरीयत अक्वाल और आमाल का मजमुआ होती है, ठीक है। इसमें कुछ लफ्ज़ होते हैं, कुछ एक्शंस होते हैं। अल्लाह ताला ने जो शरीयत नबी सल्लम के ज़रिए से हमें दी है, उसकी कुछ ख़ास चीज़ें आपके सामने रखूँगी। नंबर एक, ओवरनाइट लागू नहीं कर दी गई। क्या आज ये कानून पास हुआ और कहा गया कल से पाकिस्तान में इस्लामी शरीयत नाफिज होगी, इसमें हम बात पीछे कर चुके हैं। ये नहीं हुआ रातों रात लोगों को नमाज़ों का हुक्म दे दिया और दिस एंड दैट, इसके लिए जहन साजी की गई। शराब कोई देख लें, चार मरहलों में हराम हुई। मक्का में सूरह नहल नाजिल हो चुकी थी, आयत 67 में कहा गया कि तुम पाक रिस्क और साथ कुछ नजस चीज़ भी बना लेते हो। फिर सूरह बकरा की आयत 219 में कहा कि इन दोनों का गुना इनके नफ़े से बड़ा है। फिर सूरह निसा की आयत 43 में कहा ला तकरबुस्सलात वअंतुम सुकारा, नमाज के वक्त शराब ना पिया करो। और बिलआख़िर सूरह मायदा की आयत 90 में अल्लाह ताला ने हतमी हुक्म दे दिया कि आप यसअलूनकानिल ख़म्री वल मैसिर, तो उनको बता दो कि ये हराम है। तो शरीयत के लागू करने का पहला मरहला क्या है कि ये स्लोली स्लोली रखी गई, लोगों की जहन साजी की गई, उनको उसका नफ़ा नुकसान बताया गया। तीसरी चीज़ शरीयत के बारे में याद रखिए हमेशा से कि फितरत को अपील करती है शरीयत। अल्लाह ताला ने हमारे ऊपर कोई ऐसी शरई पाबंदी नहीं लगाई कि जिसको हमारी फितरत कबूल ना करे। ये अलग बात है कि बुरे माहौल में रहने से जब फितरत मसख हो जाती है ना, तो फिर हमें वो बातें मुश्किल लगती हैं, बोझ लगती हैं। इसी तरह जज्बात को भी अपील करती है। फिर एक और शरीयत का तकाजा क्या है कि शरीयत दीन के नफाज का दुनिया में भी अच्छा नतीजा देखना चाहती है। यानी आप ये कह लें कि शरीयत ये नहीं चाहती कि हम जन्नत में जाएं और दुनिया में रोते धोते रहें। कोई बात नहीं, कोई जिना करता है आप इसको कोड़े मार दो, रो लो, सब्र कर लो, कोई बात नहीं, जन्नत मिलेगी, नेवर। शरीयत चाहती है कि जो भी काम हम करें दुनिया में, उसका दुनिया में भी फ़ायदा देखें। मसलन अगर नमाज लोग पढ़ें तो हकीकत में बुराइयों से रुकते हुए दिखें, ज़कात दें तो उनके दिल में गरीब गुरबा की मोहब्बत पैदा हो, कोई शराब से रुके ताकि उसकी अकल सलामत रहे। अब आप सोचिए कि कोई भी कानून बना, आप किसी मुल्क का कानून देख लें, किताबों में लिखा हुआ है कोई ख़तरा नहीं, बड़ी बड़ी लाइब्रेरी में आपको पूरा पूरा लॉ पढ़ा हुआ है, लेकिन कानून बनाने के लिए पुलिस की ज़रूरत नहीं होती, मगर कानून पर अमल करवाने के लिए पुलिस की ज़रूरत होती है। ऐसी है ना, किसी मुल्क में जेलें बनती हैं, थाने बनते हैं, पुलिस नॉमिनेट होती है, और इसी तरह के जो दूसरे काम हैं। तो आप एक छोटा सा जुमला लिख लें कि इस्लामी सज़ाएं ये पुलिस हैं। पुलिस का क्या काम होता है? रोकथाम ना। पुलिस ये तो नहीं कहती कोई चोरी कर ले तो फिर चलते हैं गाड़ी लेके उसके पीछे और उसको पकड़ें और जेल में डालें, ये मकसद है पुलिस का? नहीं, पुलिस क्या चाहती है कि लोग चोरी करें ही ना, ऐसे इंतजाम किए जाएं कि वो उससे बच जाए। अब पुलिस जहाँ होती है वहाँ वाकई कोई गलत काम नहीं करता, तो बस समझ लें कि आज जिन बातों को बेस बना के इस्लाम पे उंगलियाँ उठती हैं ना, कि इस्लाम बहुत सख्त रिलीजन है, इस्लामी सज़ाएं वहशियाना हैं, और इस हदूद ऑर्डिनेंस को कभी पास ना करने दो, और इसी नाम पे मुसलमानों पे हमले किए गए, मुसलमानों को वहशियाना तौर पे पेश किया गया, उनको दिख्यानुसी कहा गया, तो आप देखेंगे कि इस्लाम में जो आज हम एक हद पढ़ने वाले हैं उसका इत्तलाक कितनी खैर लाता है कि एक पुलिस की बड़ी गाड़ी यानी एक पूरा गैंग पुलिस का जहां नाकाम हो जाता है। आज अमेरिका ने खुद इस चीज़ को एडमिट कर लिया कि हम नहीं रोक सकते लोगों को शराब पीने से। एक ऐसा दौर गुजरा था, मुहिम चली थी ये 19वीं सेंचुरी के बिल्कुल आगाज़ में, खूब कोशिश मुहिम के तौर पे जिसमें सारे लग जाते हैं, मुहिम के तौर पे ये चीज़ चली थी, और आपको पता है 5, 6, 7, 8 साल गुजरे तकरीबन और वापस ले ली, हम नहीं शराब रोक सके, फिर कर दो लीगल। उस दौर में अमेरिका में शराब इलीगल हो गई थी, लेकिन आज देख लें लीगल है। नाकाम हो गई पुलिस, चोरियों से आज कितने जरायम है, वहाँ की कहानियाँ तो आप सुने तो खुद ही हैरान होंगे, पूरी दुनिया की बात कर रही हैं इस वक्त। इसके बरक्स इस्लामी सज़ाओं का इत्तलाक किस तरह खैर लाता है, इस दौर में सिर्फ एक ही मिसाल हमारे पास हल्की फुल्की मिलती है, सऊदी अरब की। पीछे हम इस पे बात कर चुके हैं कि सऊदी अरब में आज ये चीज़ मौजूद है जो कि हम इसमें से पढ़ने वाले हैं। 5 बुनियादी सज़ाएं हैं पूरे इस्लाम के अंदर। ये हदूद की अब मैं आपको थोड़ी सी डिटेल्स देने लगी हूँ। हद क्या होती है? इस्लामी सज़ा का नाफिज होना, हद बंदी। और सही हदीस में आता है کہ ایک حد کا نافذ ہونا اس ملک میں 40 سال کی بارش سے زیادہ خیر اور برکت لاتا ہے. یعنی پاکستان میں 40 سال بارش ہوتی رہے, اس سے سبزہ اگے, ہریالی آئے, جتنی فصل اگے پاکستان والے اس کو بیچیں, کھائیں اور خوشحال ہوں, اس سے زیادہ خیر آئے گی جب ایک حد نافذ ہوگی. اور یہاں حدود کی بات ہونے والی ہے. شریعت نے 5 باتوں کے تحفظ کی قسم کھائی ہوئی ہے. اب یہ تھوڑی سی آپ کے لیے بات نہیں ہوگی, جیسے پولیس کی کچھ ذمہ داریاں ہوتی ہیں نا, آپ اس کو ساتھ ہی ساری ریلیٹ کر لیں. پولیس کیا چاہتی ہے جی, کہ آپ کے لیے پرسکون ہو ماحول, چوریاں نہ ہوں, ڈاکے نہ پڑیں, لوگ اوور سپیڈنگ نہ کریں. اسی طرح شریعت کے 5 مقاصد ہیں. آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ بیسیکلی 5 ہیومن رائٹس ہیں, 5 بنیادی حقوق ہیں جو شریعت ہمیں دیتی ہے. نمبر 1, تحفظ جان. شریعت چاہتی ہے کہ بندے کی جان محفوظ ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی ایسا ہی تھا, کوئی قتل کرتا تو پوچھا جاتا. اللہ کے نبی کی روایت بھی ہے کہ ایک مومن کی جان جب نکلتی ہے تو اللہ کو بہت رد ہوتا ہے اس سے. ٹھیک ہے, اس کے لیے پورا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں سیٹ اپ شروع ہو چکا تھا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں پولیس کا محکمہ قائم ہو چکا تھا. انسان تو انسان, جانوروں کی جان کے بھی حقوق تھے. جانوروں پہ زیادہ وزن اگر کوئی ڈالتا تو اس کو جرمانہ ہوتا تھا. آپ یہاں سمجھیں, اب جان کے تحفظ کے لیے جو پولیس مین کھڑا کیا ہوا ہے نا اسلامی سزا کے طور پہ, اس کا نام ہے قصاص. سورہ بقرہ میں ہم پڑھ چکے, وَلَكُمْ فِي الْقَصَاصِ حَيَاتٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ, تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے عقل والو. پیچھے ڈیٹیل ہو چکی نا کہ جان کے بدلے جان لے لو, نہیں تو دیت لے دو, نہیں تو گھر والے معاف کر دیں. تو قصاص ایک حد ہے ہمارے اسلام کی. دوسرا مقصد ہے شریعت کا تحفظ مال. کوئی کسی کا مال نہیں لے سکتا. اسلام میں مال کو بہت اہمیت دی گئی. سورۃ نساء میں ہم پڑھ چکے کہ یہ تو لوگوں کی زندگی قائم کرنے کا طریقہ ہے یا چیز ہے. اسی لیے اسلام نے کسی ایسے کریکٹر کو ہیرو نہیں بنا کے لوگوں کے سامنے پیش کیا کہ امیروں سے چھینتا ہے اور غریبوں کو دیتا ہے. یاد ہے کسی کریکٹر کا نام؟ رابن ہوڈ. اسلام میں کسی رابن ہوڈ کی اجازت نہیں. اس کا حال کیا تھا کہ وہ امیروں سے چوریاں کرتا تھا, مال لیتا تھا اور جا کے غریبوں میں بانٹتا تھا. اسلام نے تحفظ مال کے لیے قطع ید یعنی ہاتھ کاٹنے کی سزا دے دی. السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما, ہاتھ کاٹ دو. یہ دوسری حد ہے اسلام میں. تیسرا شریعت کا جو مقصد ہے وہ کیا ہے؟ تحفظ عقل. اسلام چاہتا ہے کہ لوگوں کی عقل بھی سلامت رہے. انسان ہے تو انسان ہی لگیں, جانور نہ بن جائیں. اور اس کے لیے پابندیاں لگائی گئیں. اسی لیے کوئی بندہ کسی کو ٹارچر نہیں دے سکتا, ذہنی طور پہ اس کو مفلوج نہیں کر سکتا. اس تحفظ کے لیے جو پولیس مین کھڑا ہوا ہے اس کا نام ہے شراب کی حد. 40 کوڑے مختلف رہی, 80 کوڑوں تک بھی بات ہے, یہ تھوڑا سا اختلافی. لیکن تیسری حد جو اسلام میں ہے نا وہ شراب کی ہے. شرابی کو درے لگیں گے, کوڑے لگیں گے, اس کے حیثیت اور حالات کے مطابق. پھر اس کے بعد چوتھا تحفظ جو شریعت ہمیں دیتی ہے نا وہ ہے تحفظ دین. کسی کے دین کا تحفظ ہو. لوگ اللہ کو ایک مانیں, اللہ کی طرف آئے ہیں تو پلٹے نا. اور اس تحفظ کے لیے جو پولیس مین حدود کی صورت میں کھڑا ہے وہ ہے ارتداد کی سزا, مرتد کی سزا. کہ جب کوئی اسلام کی طرف آ کے پلٹ جائے تو اس کو مار دو. یہ بالکل ایسے جیسے کسی ملک کا کوئی باغی پکڑا جاتا ہے, کسی ملک کے جنگی راز کوئی دے دے دوسری جگہ تو اس کو قتل کرتے ہیں, اسی طرح اس کو کر دو. یہ چوتھی حد ہے. اور 5ویں اور آخری حد جو اس وقت ہمارا موضوع ہے کہ تحفظ عزت اور نسب. اسلام ہمارے نسب کو بہت سیکیور کرنا چاہتا ہے, عزتوں کی حفاظت ہو. جو بچہ پیدا ہو اس کو پتہ چلے کہ میرا باپ کون ہے, میری نانی کون ہے, میری خالہ کون ہے, میری پھپھو, میرے ماموں, نانا, اور ایک عورت اور ایک مرد مل کے اس بچے کو پالے. اسلام اس کو نہیں توڑنا چاہتا. تو زنا کے اوپر جتنی سزا ہم سننے والے ہیں نا وہ اصل میں کس چیز کی ہے؟ کہ نسب نہ بگڑے. لوگ دنیا میں رہتے ہوئے ایسے شرمندہ نہ پھریں کہ ان کو پتہ ہی نہ چلے. آج بھی اگر آپ دیکھیں تو تکلیف دہ بات ہے کہ جو لوگ اس قسم کی باتوں پہ مذاق کرتے ہیں اسلام کا یا اس کو سخت کہتے ہیں, ان کی سوسائٹیز کا کیا حال ہے؟ ابھی میں آپ کے سامنے ایک رپورٹ رکھتی ہوں, لیکن یہ ٹاپک یہاں پورا کر لوں कि इज्जत और नसब के तहफ्फुज़ के लिए जो पांचवी हद है इस्लाम में वो है जिना और कज़फ की सज़ा। जिना के भी हमने पढ़ लिए, कज़फ की इससे अगली आयतों में आएगी। यानी कोई जिना करे, शादीशुदा करेगा तो उसको रजम किया जाएगा। पूरे कुरान पाक में इस वक्त आयत रजम नहीं है, लेकिन पहले थी। सूरत अलहज़ाब की एक आयत थी, अश्शेख व शेखतु, शेख कहते हैं शादीशुदा मर्द को या औरत को, शादीशुदा मर्द या औरत अगर जिना करें तो फरजमूहुमा, इन दोनों को रजम कर दो। आज भी ये हमें मिलती है तफसीर में आयत। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते थे कि अगर मुझे इस बात का डर ना होता कि लोग कहेंगे कि उमर ने कुरान में इजाफा कर दिया, तो मैं आज भी इस आयत को कुरान पाक के जो आगाज़ में जगह होती है वहाँ लिखवा देता। ये पहले मौजूद थी, मनसूख हुई ना आयत। नसख कौन सा है कि हुक्म मौजूद है, तिलावत मनसूख है, और आज ये हुक्म हमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से मिलता है। और जो लोग हदीस को नहीं मानना चाहते वो इसीलिए तो रजम को भी नहीं मानना चाहते, उधर से ज़्यादा शोशे उठते हैं इन चीज़ों के ऊपर, ठीक है। और अगर कोई गैर शादीशुदा जिना करे उसकी सज़ा क्या है, मुख्तलिफ हालात होंगे, लेकिन यहाँ जो बात है वो क्या है, 100 कोड़ों की सज़ा है, और साथ ही साथ ये कि 1 साल की जिला वतनी, उस वतन से निकाल दिया जाएगा, गोया कि उनका माहौल बदल दिया जाएगा, उस माहौल से निकल जाएं। और आगे जाके हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे कि जो कज़फ़ यानी किसी पे तोहमत लगाने वाला शख्स है उसकी सज़ा में 80 कोड़े और मरदूदुल शहादा बन जाएगा वो शख्स, कभी भी कहीं वो गवाह नहीं बन सकता। यानी कहीं निकाह हो रहा है ना, तो उसको बुलाएंगे तो पता चलेगा जी इसने कल किसी पे तोहमत लगाई थी, कोड़े खा चुका है, गोया कि अब इसकी हम गवाही नहीं लेंगे, कहीं लेन देन के मामलात है तो उसको नहीं लेंगे। बहरहाल ये डिटेल्स हम आगे जाके देखेंगे। तो अब आप इस सारी चीज़ को सामने रखिए कि शरीयत ने जो हदूद नाफिज किए हैं, और हद क्या है, हदूद इसको भी थोड़ा सा मैंने एक्सप्लेन पहले नहीं कर सकी थी। दो लफ्ज़ आपने सुने होंगे बड़े बोझल से, एक है हदूद और एक है ताज़ीरात। सुने कभी ये लफ्ज़ हदूद व ताज़ीरात, ऑर्डिनेंस। हदूद वो सज़ाएं होती हैं जिस पे सज़ा पूरी अल्लाह ताला ने खुद ही बता दी, जैसा कि अभी ये 5 हमने देखी। ताज़ीरात क्या होती हैं, वक्त का जो हुक्मरान है वो अपनी मर्ज़ी से चूज़ करता है, उसमें कमी बेशी हो सकती है। सिर्फ ये 5 सज़ाएं हैं जिस पे आज इतना शोशा है, इतना शोशा है, कैसे लगता है कि मुसलमान वाकई बड़े सख्त ख़राब हैं। और ऐसे और कभी गौर से बैठ के आप सोचें ना कि क्यों लोग इतना कीचड़ उछालते हैं इस्लाम पे। तो मैंने जब सोचा तो मुझे इसकी 3 बड़ी वजूहात समझ आई। नंबर 1, लाइल्मी। लोगों को हमने अच्छा सच्चा इस्लाम दिया ही नहीं, उन्होंने सूरत नूर पढ़ी नहीं, उन्होंने हदूद आर्डिनेंस को उस तरह से समझा ही नहीं जैसे होना चाहिए था। दूसरी वजह क्या है कि कुछ गाफिल और ला इल्म मुसलमानों के अमल, जिन्होंने इस्लाम का निफाज करना ही सज़ाओं से चाहा। जहाँ भी आप बात सोचें सऊदी अरब में इस्लामी निज़ाम है तो फ़ौरन क्या जहन में आता है, अच्छा फिर वहाँ कोड़े लगते हैं, अच्छा फिर वहाँ रजम होता है। हालांकि अभी बात वाज़े हुई कि 17 साल तकरीबन अल्लाह के नबी ने वो माहौल क्रिएट किया, दिलों का तकवा तस्किया तरबियत हुई, फिर हालात वो बने कि अब इसमें लोग जिए, अब कोई अगर इधर उधर करेगा तो फिर उसको पकड़ा जाएगा। आज आप सोचें कि मिसाल देते हैं कि आप चाहते हैं पाकिस्तान में इस्लामी निफाज हो जाए, कल आप एक कानून पास करें कि पाकिस्तान में ये 5 हदूद नाफिस हो गई, कोई किसी को कत्ल करेगा तो उसको भी कत्ल कर दिया जाएगा, और जिना और ये चोरी और सब की, आपको पता क्या होगा, अल्लाह माफ़ करे मैं कोई गलत बात ना मुँह से कर दूँ, मुझे लगता है आपका आबादी का मसला वैसे ही ख़त्म हो जाएगा, आधी से ज़्यादा उम्मत या तो हथ कटी हुई दिखेगी आपको, या वो मर चुके होंगे या जेलों में जा चुके होंगे, और इसमें गुमनाम चेहरों से ज़्यादा मारूफ लोग होंगे। वो आने ही नहीं देंगे ऐसी शरीयत को, और कौन कबूल करेगा। आपने वो हालात पैदा किए, आप कहते हैं चोर का हाथ काट दो, अच्छा चोर का हाथ काटो, ये देखो मुसलमान जालिम है। अभी आपने भूख तो ख़त्म ही नहीं की, गुरबत तो इतनी है, महंगाई तो इतनी है, लूट मार तो इतनी है। हज़रत उमर के दौर में एक दफ़ा कहत पड़ा था तो आपने कतायत की सज़ा को मौकूफ़ कर दिया था, कब जरा भूख है। इस वक्त जब हम उनको वो चीज़ दे ही नहीं रहे तो हम वो सज़ा कैसे देंगे। तो आज हम जब ऐसी बातों से पिन पॉइंट से दीन शुरू करते हैं ना, वो तकलीफ़ है। और तीसरी बड़ी वजह जो समझ आती है वो इस्लाम से बुग़्ज़ और दुश्मनी है। वो तो हर दौर में रहे, वो तो कुछ भी कर लें। आप जरा सोचिए कि वो रब जो खुद अन्नूर है, आपको पता है एक और बात कि अल्लाह का नाम भी अन्नूर है, क्योंकि अल्लाह हु नूर समावाती वल, क्या रोशनियों का मालिक लोगों को अंधेरे का नून दे सकता है? अल्लाह के यहाँ अंधेर है कभी भी ना, उसके हर में देर है और ना अंधेर है। हमारे यहाँ ये भी एक बड़ा ही गैर मारूफ जुमला बोलते हैं कि जी अल्लाह के यहाँ देर तो है अंधेर नहीं है, हालांकि वो तो इन्नल्लाह सरीउल हिसाब, वो तो फौरन पकड़ लेता है। और ये नूरानी आयतें, नूर वाली आयतें, ये कैसे लोगों को अंधेरों वाली बातें देंगी? असल बात यह है कि हम इसको सही तरीके से पेश करें। अब यहाँ अल्लाह सुबहाना ताला ने ये बात दे के जानी और जानिया औरत जब कोई ऐसा गलत काम करें तो तुम इन दोनों को 100-100 कोड़े मारो। अब ये सजा लोगों को बड़ी तकलीफ दे लगती है। हाय बड़ी बात है, ये क्या बात हुई। थोड़ा सा आपको मैं एक रिपोर्ट पढ़ के सुनाती हूँ कि जो लोग इन सजाओं पे बात करते हैं उनके अपने मुल्कों के हालात क्या हैं। ये शिकागो से छपने वाली एक रिपोर्ट थी, 1992 और 93 के फिगर्स थे। इसका खुलासा ही बताऊंगी, वर्ड टू वर्ड तो नहीं, आप जाना चाहें तो खुद भी गूगल में डालें और आपको कई रिपोर्टें पिछले सालों की लिखें, आप लिखें क्राइम रिपोर्ट इन यूएसएफ 1990 1940, पूरी ए टू जी लाके दे देंगे, वो खुद उनकी रिपोर्टें हैं। अब मैं आपको मुश्किल नाम बोलूँ आप लिख ही नहीं पाएंगे, लेकिन मैं आप सबको दावत देती हूँ आप शौक से जाएँ सर्च करें देखें। लेकिन जो खुलासा है आपके सामने 1992 और 93 का, कि 3,13,000 रेप हुए एक साल में, और इस रिपोर्ट में उन्होंने लिखा है कि 12 साल से कम उम्र के बच्चे और बच्चियों की तादाद शामिल नहीं है। एक साल में 3,13,000 औरतें रेप हुई, यानी उनको जिना बिल जबर का शिकार किया गया। 1995 के बारे में लिखा है कि 700 लोग जो थे वो हर 1 लाख में से औरतें जो हैं वो रेप होती हैं। 20 से 30% यानी 20-30% औरतें जिस्मानी तशद्दुद का शिकार हुई, जिसमें से 1 मिलियन औरतें फिर अपने इलाज की तलाश में निकली, फिर वो इनके होम्स में आती हैं कि हमारे लिए कुछ जगह करें, फिर इनका इलाज होता है, पकड़ते हैं, फिर हर 2 मिनट में एक रेप होता है। बल्कि एक और हवाले से तो पता चला कि हर 45 सेकेंड में एक रेप होता है, हर 6 में से 1 औरत या तो रेप का शिकार हो चुकी होती है या उससे कोशिश की जाती है। अब लगाएं कितने परसेंट बनता है। फिर 7% ग्रेड 5 की बच्चियां जिनसी तशद्दुद का शिकार हो चुकी हैं, आप सोचिए। और ये जो शिकार होती हैं इनमें से 34% लड़कियां अपने फैमिली मेंबर्स के हाथों रेप होती हैं, बाप और भाइयों के हाथों। इसीलिए तो कहा था ना अल्लाह के नबी ने कि भाई भाई का बिस्तर भी अलग कर दो। किसी ने कहा कि अगर तुम ख़त्म करना चाहते हो ऐसी चीज़ों को तो फिर बच्चों के बिस्तर अलग कर दो, और अल्लाह का नबी के तुम कहते हैं क्या रिजिडिटी है, हमारे बच्चे तो इतने भोले हैं। देखिए सिविलाइज्ड होना क्या होता है, इंसान होना, ये तो जानवर भी नहीं ऐसे करते। आप क्या सोच सकते हैं कि जिस मुल्क के स्कूल के फॉर्म्स पे माँ बाप के नाम के साथ लिखा हो, 3 ऑप्शंस होती हैं, आप कोई किसी स्कूल का फॉर्म डाउनलोड करके देख लें, क्या तुम्हारे माँ बाप शादीशुदा हैं, क्या वो लिविंग टुगेदर थे या स्ट्रेंजर थे। आज बच्चे के नाम के साथ बाप का नाम कई स्कूलों के और कॉलेजों के फॉर्म से ख़त्म कर दिया गया। माएँ आके कहती थी हमें एम्बेरसमेंट होती है, हम क्या बताएं ये किसका बच्चा है। एक औरत थी तो कहने लगी कि मुझे एक नाइजेरियन औरत मिली, उसके 6 बच्चे थे, तो ऐसे ही उन्होंने पूछा अच्छा तुम्हारा हस्बैंड क्या करता है, को करी ना मैंने शादी नहीं की, कहती है अभी तक मुझे कोई इस काबिल मिला ही नहीं कि मैं उससे शादी करूं। क्या ये सिविलाइजेशन है? आप चाहें तो BCO रिपोर्ट्स आप लिख के पढ़ के देख सकते हैं कि क्या वो मुआशरे जो मुसलमानों को इस तरह की बातें कहते हैं, क्या वहाँ सब कुछ हो गया? आप देखिए कि आज के दौर में आप देखें तो आपको 2 किस्म के गिरोह दिखते हैं दुनिया में लोगों के। एक है जिनको बहुत सो कॉल्ड सिविलाइज कंट्रीज आप कहते हैं, मतलब जिसको आप वेस्टर्न कंट्रीज कह लें, जो अपने आप को बहुत इंसान दोस्त कहते हैं और वो कहते हैं कि हम इंसानी हकूक देते हैं, हमारे यहाँ जानवरों के भी बहुत हकूक हैं और फलाओं के भी हैं। और दूसरी जो बांट है वो कहें अनसिविलाइज कंट्री, जिसको आराम से कह देते हैं थर्ड वर्ल्ड, यहाँ तो जी इतना जुल्म है और औरतों को मारते हैं और जानवरों पर जुल्म करते हैं। हालांकि अगर आप फिगर्स देखें ना, तो जो लोग आज दुनिया में खुद बहुत बड़े सिविलाइज्ड होने के दावेदार हैं ना, उनके अपने हालात क्या हैं? हम जो कहते हैं ना तरक्की याफ्ता मुल्क, ये तरक्की क्या है? हम डेवलपमेंट को तरक्की कहते हैं, ये समझ लें छोटी सी बात। आप देखिए कि इन लोगों के अंदर रिसर्च का मादा बहुत है ना। मसलन ये चांद पे चले गए, इन्होंने हबल बना लिया, वो फिज़ा में से तस्वीरें खींच खींच के हमको भेजता है, ये तरक्की है? ये तरक्की नहीं है, ये डेवलपमेंट है, ये रिसर्च है। एक ले मैन, एक आम बंदे को क्या फ़ायदा हुआ आप चांद पे चले गए? आपको पता है कि अब अमेरिका में ये आवाज़ें उठनी शुरू हो गई हैं, वहाँ जब इकोनॉमी का फ्लॉ आया, तो मैंने खुद ये बातें सुनी लोगों से, वो कहते हैं कि क्या ज़रूरत है हुकूमत को नासा पे इतना पैसा लगाने की, चांद पे जाएं वो करें, बंद करें, हमारे मुल्क में इतनी महंगाई है। भाई किसी को क्या लगे आप चांद पे गए, आपको सेटेलाइट की तस्वीरें आ रही हैं, हालांकि यकीन करें कि इनकी इस रिसर्च से इस्लाम को फ़ायदा हुआ है। भला कैसे? वो वहाँ से वो कुछ लेके आते हैं, वही कुरान में आते हैं, टैली हो जाता है। पीछे ही पढ़ा हमने कि ज़मीन और आसमान जुड़े हुए थे, फिर अलग हो गए, बिग बैंग थेरी इस्लाम ने साबित कर दी। सखर अलकुम मा फिल अर्दी में, आप चांद पे जाते हैं, इस्लाम कहते हैं हाँ आप जाएंगे। हमारे इस्लाम को ज़्यादा फायदा हो रहा है इनकी तरक्की से, लेकिन आम लोगों को तो पानी चाहिए, रोटी चाहिए, खाना चाहिए। हम बज़ाहर इन बड़ी बड़ी चीज़ों को ये सोच लेते हैं कि ये कामयाब है, चलिए देख लेते हैं कितने कामयाब हैं। वो कहते हैं ना कि सितारों पे कमंदे डालने वाले, क्या ज़मीन पे भी उनके कदम हैं? आप देखिए कि आप अपने घर की बात कर लें, आप कहते हैं कि मुझे एक बड़ा कामयाब घर बनाना है। आपके घर में रोटी होनी चाहिए, खाने पीने की चीज़ें, गर्मी सर्दी, घर में खुशी हो। आप ज़रा अंदर जाके देखें, क्या जरायम ख़त्म हो गए इन मुल्कों से? क्या यहाँ तालीम 100% कर दी आम? वाकई 98% के करीब फिगर है इन मुल्कों में तालीम का। तो क्या उस तालीम के नतीजे में औलाद और घर वाले और जो लोग पैदा हो रहे हैं वो बहुत सिविलाइज्ड हैं? और ही ज़्यादा मेरा ख्याल है कि दिमागों में हवा भरती जा रही है ना। क्या औरत माँ रही, बीवी रही, बेटी रही? खुदकुशी का रेट तो आप देखें सारी दुनिया से इधर ज़्यादा, ब्रोकन फैमिलीज इधर ज़्यादा, औरतों पे तशद्दुद इधर ज़्यादा, एब्यूज चाइल्ड इधर ज़्यादा। आप फील करें कि जराइम सबसे ज़्यादा इस वक्त तरक्की याफ्ता मुल्कों में है। हमारे मुल्कों में तो फ़ायदा ये ना कि एक कोई करता है तो सारी दुनिया उछालने में तैयार है। आप देखिए कि इस्लाम का मिजाज क्या है, किसी भी बुराई को जड़ से ही उखाड़ दो, बढ़ने ही ना पाए शुरू में कर दो। बस आप देखते हैं ना कि आपके घर के सहन में कोई ख़राब चीज़ या कोई ऐसा कांटों वाला पौधा उठने लगा है, आप जाएं फ़ौरन उसकी जड़ उखेड़ दें, ख़त्म हो जाएगा ना। और आप क्या करें, हाय पौधा बढ़ रहा है, चलो बढ़ने दो। फिर उसके बाद आप क्या करें कि उसके इर्द गिर्द एक बाड़ लगाएं, फिर उसके साथ साइन लगाएं कि इस पौधे को कोई ना छुए, ये ना करे, ये सही तरीके क्या है? उसको निकाल दो। अब आप इमेजिन करें कि कहीं को खाई है, अब उसके अंदर लोगों के गिरने का डर है। एक तरीका क्या है कि आप उस खाई से काफ़ी दूर पहले एक दीवार लगा दें और वहाँ लिख दें कि आगे खाई है, आप प्लीज़ एहतियात से इधर जाएं, कुछ ना करें। एक तरीका कार ये है। एक दूसरा तरीके कार ये है कि आप उसके दीवारें तो ना लगाएं कि नहीं रहने दो, नेचुरली रहने दो, और लोगों को क्यों तंग करते हो। और साथ ही आप क्या करें, एक एम्बुलेंस खड़ी कर दें, फिर नीचे आप एक हड्डियां जोड़ने वाला हॉस्पिटल बना दें। कौन सा तरीका बेहतर है? आपके कोई बात नहीं, गिरते तो लोगों को गिरते रहे, हम पकड़ लेंगे, हमारी एम्बुलेंस तैयार है, हम पकड़ेंगे इनको, ले जाएंगे हड्डियां जोड़ने वाले हॉस्पिटल में। अकलमंदी क्या है? आज इस्लाम ने जो तरीका दिया वो कौन सा है? पहले वाला, ला तकरबुल ज़िना, मत जाओ करीब, यहाँ खड्डा है, इसमें गिर जाओगे, तुम्हारी नस्लें गुम जाएंगी, तुम्हारी पहचान ख़त्म हो जाएगी, तुम इधर ही रुक जाओ। इसको लोग कहते हैं रिजिडिटी है, इन्होंने व्यू ख़राब कर दिया। और नॉन मुस्लिम जो आज के दौर में कर रहे हैं ना, वो दूसरी मिसाल कर रहे हैं। उन्होंने ऐसे ओल्ड होम्स बना लिए, उन्होंने रेस्क्यू स्टेशंस बना दिए, किसी तशद्दुद वाली औरतों को बहुत कुछ मिलता है, तो उसको ख़त्म क्यों नहीं करते? तो आप उधर से आग जला ही रखें, दूध उबलता ही जाए और साथ साथ चूल्हा साफ़ करते जाएँ, तो वो तो कभी साफ़ नहीं होगा। तो बहरहाल अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह हमें इस्लाम की कदर करने वाला बना दे, हम अपने इस्लाम को देखें और फिर उसके बाद हम इसके ऊपर फ़ख्र करें, ना कि हम इस पे शर्मिंदा हों। थोड़ी सी बीच में तिलावत सुना दें इन दुआयतों की, क्योंकि थोड़ा सा दिल पे बोझ आता है ऐसी बातों को बयान करते हुए।
بسم الله الرحمن الرحيم
سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين.